पृष्ठ संख्या 93। लखनऊ में मरसिया की जो उन्नति हुई उसने संपूर्ण उर्दू काव्य की सीमाओं को विस्तृत कर दिया और लखनऊ में जो पतन आरंभ हो चुका था उसको रोककर काव्य रचना के नए द्वार खोल दिए। बहुत से आलोचकों का विचार है कि मरसिया में जो शैली अपनाई गई उससे आधुनिक काव्य धारा को भी प्रेरणा मिली, लेकिन यह कुछ बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि आधुनिक काव्य रचना जिन समस्याओं के फलस्वरूप लिखी गई है वह मरसिया लिखने वालों के सामने नहीं थी। नई कविता में एक नई चेतना का उद्भव दिख पड़ता है। मरसिया में जो नवीनता है वह चेतना की नवीनता नहीं है, बल्कि विषय के प्रस्तुत करने के ढंग और शैली की नवीनता है। मीर, अनीस और मिर्जा दबीर के बाद भी मरसिया लिखे जाते रहे। अनीस के दो भाई मुनिस और उन्स भी बहुत बड़े कवि थे जिन्होंने भी मरसिए ही लिखे। मीर अनीस के तीन पुत्र मरसिए ही लिखते थे, जिनमें नफीस को लगभग वही महत्व दिया जाता है जो अनीस को प्राप्त है। इस वंश में आज तक मरसिए लिखने वाले चले आ रहे हैं, परंतु सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बदल जाने के कारण अब साहित्य में मरसिए का वह स्थान नहीं रह गया है। इसी प्रकार मिर्जा दबीर के पुत्र औज भी बड़े प्रसिद्ध मरसिया लिखने वाले हुए हैं। इस परिवार में भी आज तक मरसिया लिखा जा रहा है और यह बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है कि दोनों कुल अपने अपने पूर्वजों की प्रथा का निरंतर पालन कर रहे हैं। इन लोगों के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध मरसिया लिखने वाले कवि भी हुए हैं, जैसे इश्क, तअश्शुक, रशीद, आरिफ और वहीद इत्यादि। इश्क और तअश्शुक दोनों भाइयों ने मरसिए में नई डगर निकाली। उन्होंने मरसिए की बनावट में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, किंतु भाषा के कुछ ऐसे नियमों का पालन किया जो अनीस, दबीर और उनके अनुयायी स्वीकार नहीं करते थे। तो अश्सुक गजल के भी अच्छे कवि थे और उनके मरसिए पर गजल के रसीलेपन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे जाता है, किंतु वह उनके वीर रस संबंधी भावों को मंद नहीं करता। अनीस और तअश्शुक दोनों से प्रभावित होने वाले मरसिया कवियों में प्यारे साहब रशीद का स्थान भी ऊंचा है। कुछ ही समय के भीतर इतने मरसिया लिखने वालों का एकत्र हो जाना साहित्य के इतिहास की विस्मरणीय घटना है। इन सबके परिवार में इस समय तक ऐसे कवि मौजूद हैं जो मरसिया की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। अगर लखनऊ काव्य केंद्र की विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो प्रतीत होगा कि यहाँ काव्य रचना का आरंभ उन्हीं कवियों के हाथों हुआ जो दिल्ली से यहाँ आए थे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद यहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कुछ ऐसे छोटे मोटे परिवर्तन हुए जिन्हें यहाँ की भाषा और साहित्य दोनों का दिल्ली से पृथक रूप स्थापित हो गया। आरंभ में तो यह परिवर्तन अनजान और अचेत रूप से हुआ होगा, लेकिन बाद में यहाँ के कवियों और लेखकों ने जागरूकता, पृष्ठ संख्या 94, पूर्वक अपने रंग को दिल्ली से अलग करने की चेष्टा की और इसमें उनको सफलता भी मिली। अवध के समस्त जीवन और सभ्यता में एक विशेष प्रकार की लचक, कोमलता तथा सूक्ष्मता पैदा हो गई, जिसने वाह्य सुंदरता और उसके वर्णन को बनावट के रंग में रंग दिया और लिखने वालों ने एक ऐसा शब्द आडंबर खड़ा कर दिया कि जीवन की समस्याओं और विषयों की गंभीरता उसी में डूब कर रह गई। इसमें संदेह नहीं कि लखनऊ ने भाषा को सुंदर और लचकदार बनाने में बड़ा काम किया, पर उसका एक अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवियों ने केवल शब्दों के प्रयोग को कविता समझ लिया और अलंकारों के प्रयोग को अपनी समस्त शक्ति समर्पित कर दी। कुछ कवि और विशेषकर मरसिया लिखने वाले ऐसे अवश्य हुए जिन्होंने अपनी नौका इसी समुद्र में चलाकर भी गंभीर और महान काव्य की रचना की और अपने दामन को उन बुराइयों से बचा लिया जिनके लिए लखनऊ बदनाम हो रहा था। ऊपर के पृष्ठों में यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि लखनऊ और दिल्ली का झगड़ा आलोचकों ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है उसका वह रूप नहीं है, क्योंकि भारत की राजनीतिक स्थिति जिस प्रकार से बदल रही थी उसमें दिल्ली और लखनऊ में कोई अंतर नहीं था। आर्थिक ढांचा भी जैसा का तैसा था, केवल ऊपरी तौर से और अस्थायी परिवर्तन हुए थे जो साहित्य के आधार को नहीं बदल सकते थे। अभी तक वह परिपाटियां प्रबल थी जिनको सामंतवादी सभ्यता ने जन्म दिया था। यद्यपि भारत के जीवन में यूरोप के विचार प्रवेश कर रहे थे, परंतु साधारण जीवन उससे प्रभावित नहीं हो रहा था और अधिकतर लोग अपने अतीत से ही चिपटे हुए थे। दिल्ली से पृथक रूप स्थापित हो गया। आरंभ में तो यह परिवर्तन अनजान और अचेत रूप से हुआ होगा, लेकिन बाद में यहाँ के कवियों और लेखकों ने जागरूकता पूर्वक अपने रंग को दिल्ली से अलग करने की चेष्टा की और इसमें उनको सफलता भी मिली। पृष्ठ संख्या 94।